أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم اجعل من الذين يستمعون القول ويتبعون ما أحسن. إيه الله، आप हमें उन लोगों में शामिल कीजिए जो पहले बात को अच्छे से सुनते हैं और फिर उसके अच्छे पर अमल करते हैं। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिलहक व तवासौ बिस्सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके अय्याम बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे और अच्छे गुजरने चाहिए, क्योंकि एक ख़ास चीज़ के साथ जुड़ के इंसान भी ख़ास हो जाता है। एक ऐसी किताब के साथ जुड़ के जो दिलों को शिफा देती है, जो रूहों को मुअत्तर करती है, जो जिंदगियों को निखारती है और जो हमारे मुकद्दर, चाहे दुनियावी लिहाज से हों या उखरवी लिहाज से हों, उनको खूबसूरत अंदाज में बनाती है। तो एक ऐसी किताब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की रहमत से, उसके फजल से हम सब जुड़ चुके हैं। अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखें और ज़माने के शुरूर से अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाएं। अल्लाह इस कुरान को हमारे दिल की बहार बना दें और अल्लाह इस कुरान को हमारा सबसे बड़ा हम और गम बना दें। हमारी फिक्रें कुरान की फिक्रें हों, हमारी सोच कुरान की सोच हो, हमारी आंखें सबसे ज़्यादा इसका दीदार करें और ज़्यादा वक्त इसके सीखने और सिखाने में गुजरे। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, तो कैसा गुजर रहा है आपका ये सफ़र कुरान के साथ? याद रखिएगा, वक्त गुजर रहा है और बहुत जल्द ये कोर्स एंड हो जाएगा। आगे हम इंशाल्लाह बहुत फास्ट चलेंगे। अभी क्योंकि कुछ स्टार्टिंग की सूरज हैं तो इनमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो कोशिश करें बस जो आप ले रहे हैं ना, उसको अपने अमल में ढाल लें। मालत तब खूबसूरत लगती है जब वो गले में डाली जाती है, इसलिए इन खूबसूरत मोतियों की एक माला बनाएं और अपने अमल में ढाल लें। आपकी अमल इस चीज को साबित करें कि वाकई आप अहलुल कुरान हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस का मफहूम है कि हलाकत है उस शख्स के लिए जिसका आज कल से बेहतर ना हो। हलाकत है यानी बर्बादी है, तबाही है। दुनियावी लिहाज से हम हर दिन खुद को कितना अपलिफ्ट करते हैं, आज से एक साल पहले देखें और अभी देखें हम कितना चेंज हो चुके हैं। हमारा स्टाइल, हमारे ड्रेसिंग का स्टाइल, हमारा हर चीज का एक सेंस और एक टेस्ट चेंज हो चुका है, लेकिन दीन के लिहाज से आज भी वही पुराना टेस्ट। बस उसी पे कंप्रोमाइज करते हैं जो बचपन में पढ़ लिया, जो अनकॉन्शियसली मुझे और आपको सिखा दिया गया। आप कोई जानबूझ के एफर्ट्स नहीं करते। किसी भी चीज का टेस्ट उस वक्त तक डेवलप नहीं होता जब तक शौरी तौर पर कोशिश ना की जाए। इसीलिए दीन का भी टेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, क्योंकि बचपन में अनकॉन्शियसली बस जो हमें पिला दिया गया उसी पे हम कंप्रोमाइज किए बैठे हुए। तो खुदारा उठें। वअलैसा लिलइंसान इल्ला मा सअ, इंसान के लिए वही कुछ है जो उसने कोशिश की है। ये हो ही नहीं सकता कि इंसान अल्लाह को पाने के लिए कोशिश करे और वो अल्लाह को पा ना ले, अल्लाह की मोहब्बत के लिए वो स्ट्राइव करे और अल्लाह की मोहब्बत उसे ना मिले, हिदायत के लिए वो तड़पे और उसको हिदायत ना मिले। हम तो अब इस इरा में है कि हम खुद दुआ भी नहीं करते अपने लिए, अपने आप से इतने डिसअपॉइंट हो चुके हैं। लोगों को कहते रहते हैं आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, खुद क्यों नहीं करते? वो रब तो सबका है, वो मेरा भी रब है, मैं भी उसके क्रिएशन हूँ। ओके, दुआ के लिए दूसरों को कहना चाहिए, क्योंकि दूसरों की जबान से हमने कोई गुनाह नहीं किया होता, लेकिन इसको इतना ट्रेंड नहीं बनाना चाहिए कि अपनी हिदायत के लिए भी दूसरों को कहें। खुद कोशिश करनी होगी। तो उठें, जागें, जिंदगी बहुत थोड़ी है, हर दिन बस आखिरी दिन है, हर सूरज एक नया सूरज है और हर डूबता सूरज आखिरी सूरज है। जिंदगी तमाम हो रही है और हम किस तरफ जा रहे हैं, हर रात एटलीस्ट एक बार तो जरूर सोचना चाहिए। अल्लाह ने जो इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, इसको दुनिया के पीछे जाया नहीं करना, ये इंसान की डिग्निटी के खिलाफ है। कायनात सारी हमारी है, बस हमें रब का होना है। अलामा इकबाल ने कहा था कि काफिर की है पहचान कि आफाक में है गुम, और मोमिन की है पहचान कि आफाक उसमें है गुम। तो इसलिए दुनिया के पीछे नहीं भागें। अल्हाकुम उत्तकासुर हत्ता सुरतुमुल मकाबिर, कसरत ने हमें हलाक कर दिया, यहाँ तक कि हम कब्रों तक पहुंच गए। अल्लाह से बहुत दुआ किया करें कि अल्लाह मुझे हकीर चीज नहीं चाहिए, मुझे हमेशगी वाली जन्नत चाहिए। अपनी सोच को बड़ा करें, इस जहां पर नहीं उस जहां पर नजर रखें। जब असल टारगेट वो जहां होगा, तो फिर उसके लिए कोशिश करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर ये कोर्स कोई कोर्स नहीं लगेगा, फिर एक कोर्स के हजारों कोर्स इंसान कर सकेगा। बस शर्त यह है कि नजर उस जहान पर होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सब के गमों को आखिरत का गम बना दें, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि हम जन्नत को पाने के लिए कुछ कोशिश कर सकें। चलिए अब आते हैं अपने लेसन की तरफ। हम लोग सूरह इखलास के इन डेप्थ स्टडी कर रहे थे, और एक आयत हम कर चुके थे, आज हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस सूरत में फरमाते हैं, कुल हु अल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कुरैश मक्का के लिए अहद और समद का नाम बहुत ह्यूज था, यानी अहद ने उनके पांव के नीचे की जमीन हिला दी थी, और इस नाम ने कुरैश की पोजीशन को हिला दिया था, क्योंकि तौहीद का दावा दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान मांगता है। तो इसलिए उनकी जड़ें हिल गई थी जब उन्होंने सुना अहद और जब उन्होंने सुना असमद। तो गोया इस सूरत में जो दो लफ्ज आए हैं, एक अहद और एक समद, ये इस सूरत का अमूद है, पिलर्स हैं। और अरब ने अल्लाह के लिए असमद का लफ्ज कभी नहीं इस्तेमाल किया था। जमाने जाहिलियत में वो पोइट्री में इस वर्ड को यूज करते थे, और ऐसे रॉक के लिए इस्तेमाल करते जो समंदर के दरमियान में हो और किसी के साथ कनेक्टेड ना हो। एक बड़ी रॉक जो समंदर के दरमियान में है, उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन कश्ती को सहारा देने के लिए उसका सहारा लिया जाता था। तो ऐसे रॉक को वो असमद कहते थे, यानी जो खुद तो बेनियाज है लेकिन सब उसकी तरफ मुतवज्जे है, यानी कश्ती भी और कश्ती वाले भी। इसी तरह समद ऐसा वॉरियर को भी वो कहते थे कि जिसका अकेला खड़ा होना ही सारी फौज के लिए काफी हो जाता था। किसी ना किसी फैमिली में भी कोई ऐसा शख्स होगा जिसका खड़ा हो जाना, यानी जो अपने पीछे सब कुछ छुपा लेता है, तो उसको समद कहा जाता है। अब यहाँ जो इस आयत में आया है, कुल हु अल्लाह वहद अल्लाहु समद, तो अल्लाह ताला अपना तारुफ अपने नाम और अपने सिफात के जरिए करवा रहे हैं। असमद के कुछ मीनिंग्स हैं, मैं आपको लिखवाती हूँ, आप लिख लीजिए। नंबर वन, असमद वो है जो लोगों की हाजत पूरी करने के लिए काफी हो जाए। नंबर टू, जिसकी तरफ मखलूकात अपनी हाजत के लिए देखें। नंबर थ्री, जिसको इंसान अपना अल्टीमेट गोल बना ले। नंबर फोर, वो जिसको किसी की हाजत नहीं है और उसकी स्टेटस से आगे कोई नहीं बढ़ सकता। नंबर 5, समत उसको कहते हैं जिसमें कोई फॉल्ट नहीं है। नंबर 6, समत वो है जो अपने जलाल में, अपनी अजमत में और हमेशगी में ग्रेट है। इसी तरह नंबर 7, समत वो है यानी ऐसी हस्ती है जिसमें कोई होल नहीं है, कोई खला नहीं है, परफेक्ट। नंबर 8, समत वो है जिसको खाने पीने की हाजत नहीं है। और नंबर 9, समत वो है जिसके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है। ये सारे मीनिंग्स समत की डेफिनेशन में आते हैं। अल्लाह अकबर, ये है अरेबिक लैंग्वेज का मौजजा। एक छोटा सा वर्ड है समत, 3 अल्फाज पर मुश्तमिल, लेकिन इसके अंदर 9 माना पाए जाते हैं। तो गोया अल्लाह रबुल इज्जत अपना तारुफ कुछ यूं करवा रहे हैं कि मैं कौन हूं, अल्लाह समत, मैं बेनियाज हूं, मैं समद हूं, मैं लोगों की हाजत पूरी करने के लिए काफी हूं, मैं वो जात हूं कि मखलूकात अपनी हाजत के लिए मेरी तरफ देखते हैं, मैं वो जात हूं कि इंसान को चाहिए कि मुझे अपना अल्टीमेट गोल बना ले, मैं वो जात हूं कि मुझे किसी चीज की हाजत नहीं है, मैं वो जात हूं कि मेरे में कोई फॉल्ट नहीं है, मैं वो जात हूं कि मैं अपने जलाल में, अपनी अजमत में और अपनी हमेशगी में ग्रेट हूं। कुल्लु मन अलीहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। मैं वो हूं जिसको हमेशा बका है, मैं वो हूं जिसको कभी फना नहीं है, मैं वो हूं जिसमें कोई खला नहीं है, मैं वो हूं जिसको खाने पीने की हाजत नहीं है, और मैं वो हूं जिसके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है। एक वर्ल्ड कितने मुतालबे मुझसे और आपसे कर रहा है। जरा सोचिए, क्या हम वाकई अल्लाह को असमत मानते हैं? टू बी ऑनेस्ट, थोड़ी देर के लिए अपने अंदर जाके, क्या हम सिर्फ अल्लाह को हाजत पूरी करने के लिए काफी समझते हैं? हमें तो पहले लोगों का ख्याल आता है, फलां शख्स मेरी हाजत पूरी करेगा, फलां करेगा, और जब लोगों की तरफ से मायूस होते हैं तो तब अल्लाह का ख्याल आता है। क्या मैंने और आपने अल्लाह को अपना अल्टीमेट गोल बनाया हुआ है? हमारे गोल्स क्या हैं? कहीं भी हमारे गोल में हमारे रब भी है, उसका दीदार, उसकी रहमत, उसकी जन्नत। समत तो वो है जिसके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि अल्लाह के बगैर इंसान कैसे रह सकता है, कैसे पॉसिबल है? लेकिन कितनी आसानी से हम अपने रब के मामले में कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कितनी आसानी से मखलूक को खुश करने के लिए खालिक को नाराज करते हैं। कोई आ गया, इट्स ओके, इसको पहले खुश कर लूं, नमाज समय बाद में पढ़ लूंगी, असर के साथ पढ़ लूंगी, मगरिब के साथ पढ़ लूंगी। नहीं, अगर मैंने झूठ ना बोला तो मेरी अम्मी और मेरे हस्बैंड और मेरे फलां नाराज हो जाएंगे। और अगर ये मैंने फैशन अडॉप्ट ना किया तो मेरी फैमिली वाले मुझे क्या समझेंगे, मेरे कजन्स और मेरी फ्रेंड्स और पता नहीं मेरा कौन कौन क्या समझेगा? कभी ये भी देखा कि अल्लाह ताला, अल्लाह की पसंद, उसकी नापसंद? हमेशा मखलूक से डरते या मखलूक को राजी करते हम अपने आप को फना कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है कि कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज को फना है, आप जिस इंसान के लिए कुछ कर रहे हैं ना, उस इंसान को भी फना है। फिर ये कैसे मुमकिन है कि आपको दवाम मिले, आपको सराहा जाए, आपकी कोशिशों को एडमायर किया जाए, लोग आपसे खुश हों, मखलूक को नाराज करके हम बड़े गमगीन होते हैं, लेकिन खालिक को नाराज करके उस पे हमारा जमीर कहाँ जाता है? और याद रखिएगा, अगर अल्लाह को नाराज करके अल्लाह के बंदों को राजी करने के लिए मैं और आप कोशिश करेंगे तो सॉरी टू से हम सबसे ज्यादा बेवकूफ इंसान है, क्योंकि दिल तो अल्लाह के हाथ में है। आप उस रब के हो, अल्लाह बंदों के दिलों में मोहब्बत डाल देगा। हदीस का मफहूम है कि अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह जिब्रील को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर जिब्रील आसमान में सब फरिश्तों को जमा करते हैं और वहां ऐलान करते हैं। फिर इसी तरह जमीन पे ऐलान किया जाता है और बंदों के दिलों में मोहब्बत डाल दी जाती है। मोहब्बत अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक रिस्क है और इसकी तकसीम भी अल्लाह ताला करते हैं। आप वो करें जो अल्लाह को पसंद है तो अल्लाह वो हालात पैदा कर देंगे जो हालात आपको पसंद है। और जब इंसान इतनी आरजी है तो उसके लिए की गई कोशिश भी आरजी है। तो अगर मैं और आप अपने आप को हमेशगी के सफर पे लाना चाहते हैं कि हमारा नाम हमारा स्टेटस हमेशा रहे, तो अल्लाह के साथ कनेक्ट करें खुद को, क्योंकि अल्लाह की जात परफेक्ट है। उसके साथ हम जुड़ेंगे तो हमें भी परफेक्शन मिलती जाएगी। अल्लाह की जात को बका है, उसके साथ हम जुड़ेंगे तो हमें बका मिलती जाएगी। अल्लाह सरापा नूर है, उसके साथ जुड़ेंगे तो हमारी जिंदगियां मुनव्वर और मुअत्तर होती जाएंगी। तो ये समत का एक असल पैगाम था कि मैं ऐसा समत हूं। हम अल्लाह को अल्लाह तो मानते हैं लेकिन सिर्फ जबान से। हमारे एक्शंस आज तौहीद पर मबनी नहीं है, तो इसलिए आज सबने चेक करना है और सही ऑनेस्टली चेक करना है कि क्या मैंने अल्लाह को अल्टीमेट गोल समझा, क्या मैं हाजत के लिए अल्लाह की तरफ जाती हूँ, क्या मैं ऐसी हूं कि मैं अल्लाह के बगैर मेरा गुजारा है। ये सारे पॉइंट्स आपने सोचने। बहरहाल आगे चलते हैं। स्कॉलर्स कहते हैं कि इंसान जब परेशान हो तो वो अल्लाह के इन नामों को देखे, क्योंकि कितना हौसला मिलता है। सिर्फ एक समत नाम को हम देख लें तो कितना हौसला मिल गया कि अल्लाह के साथ परफेक्ट है और अल्लाह के साथ में कोई फॉल्ट नहीं है, कोई खला नहीं है, और जो हाजत पूरी करता है तो मैंने उसकी तरफ जाना है। इमाम कुर्तबी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह को जानने वाले और अल्लाह की पहचान करने वाले आसपास लोगों की मदद जरूर करते हैं। मतलब ये जो नाम है ना असमद, ये एक मुतालबा कर रहा है इंसान से। वो क्या मुतालबा कर रहा है कि अपनी मुश्किल से निकलने के लिए दूसरों की मुश्किलात दूर करनी है। मसलन देखें, जब हमने देखा ना कि हर चीज में एक फॉल्ट है, एक अलग की जात में फॉल्ट नहीं है, तो हम अगले इंसान को भी समझ जाते हैं जिसने हमारे साथ गलत किया होता है। तो और हर नाम एक मुतालबा करता है। एक तरफ हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, दूसरी तरफ एक तकाजा भी करता है। मसलन अल्लाह ताला हाजत पूरी करने वाले, तो जरूरी है कि हम अल्लाह के बंदों की हाजात पूरी करें। अपनी मुश्किल से निकलना है, आप लोगों को मुश्किलात से निकालना शुरू कर दें, क्योंकि जो हम देंगे वही लेंगे। मोहब्बत देंगे तो मोहब्बत मिलेगी, नफरत देंगे तो नफरत मिलेगी। तो गोया असमत मुतालबा कर रहा है कि अगर अपनी मुश्किल से निकलना है तो दूसरों को मुश्किलात से निकालिए। और मुश्किलात से निकलने के बहुत से तरीके हैं। कभी कभार इंसान को सिर्फ मुतमईन करने वाला एक जुमला चाहिए होता है। कभी कभार इंसान को सिर्फ एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो किसी की सुने। कभी कभार इंसान को एक मुतमईन करने वाला, सिर्फ एक मुतमईन करने वाला जुमला चाहिए होता है। तसल्ली के कुछ अल्फाज चाहिए होते हैं, सिर्फ एक कंधा चाहिए होता है रोने के लिए। इसलिए आप वो इंसान बने कि लोग आपकी तरफ आए, लोग आपको देखें तो उन्हें लगे कि हाँ, ये वो बंदा है कि जिसके साथ मैं कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। इसमें मुझे पीस नजर आ रहा है, ये मुझे समझेगा, उसके बाद करना ना करना वो अल्लाह की तौफीक से, और अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह मुझे जरिया बनाए कि मैं बंदों के लिए आसानी कर सकूं। और ये बहुत बड़ी खुशबख्ती होती है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से हमेशा बेहतर है। तो देने वाले बने, चाहे वो माल है, चाहे वो मोहब्बत है, चाहे वो सुकून है, चाहे वो खुशी है, चाहे वो मसर्रत है, कुछ भी है, आप देने वाले बने। और मैंने बहुत पहले एक जगह पढ़ा था कि आपके पास जिस चीज की कमी है आप वो देना शुरू कर दें, कुछ टाइम बाद उसकी फरवानी आपको मिल जाएगी। और फिर किसी नीचे पूछने वाले ने पूछा था कि मुझे कुरान याद नहीं होता, तो जवाब मिला था कि आप कुरान सिखाना शुरू कर दें। किसी ने कहा मेरे पास दौलत की कमी है, आप दौलत बांटना शुरू कर दें। तो इसलिए असमत क्या तकाजा कर रहा है कि दूसरों के लिए आसानी करें, अल्लाह मेरी और आपकी जिंदगी को आसान फरमा देंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अरब ने असमत के साथ अल्लाह को कभी मेंशन नहीं किया था, कभी भी मेंशन नहीं किया था। तो जब असमत नाम आ गया तो अगेन कुरैश मक्का हिल कर रह गए कि अल्लाह तो बेनियाज है, उसको तो किसी की जरूरत ही नहीं है। और फिर हम ये जो बुत बनाए जा रहे हैं और हमें लगता है कि ये वसीला है अल्लाह तक पहुंचने के लिए, अल्लाह को तो जरूरत ही नहीं है। तो अगेन शिर्क की जड़ें अल्लाह ने एक नाम के जरिए काट दी हैं, सिर्फ एक नाम के जरिए। अल्लाह ने खुद को कहीं ऐसे जस्टिफाई नहीं किया इस सूरत में कि नहीं जो तुम कर रहे हो वो गलत है, वो मुझे डिजर्व नहीं करता, या ये या वो। नो, अल्लाह ने बस एक अपना नाम, एक अपना एट्रीब्यूट बता दिया और उसने आगे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, सुभान अल्लाह। इसके बाद स्कॉलर्स कहते हैं कि असमत पढ़ने के बाद अल्लाह की पर्सनालिटी पूरी कायनात में डिजायर्ड पर्सनालिटी है, जिसकी तमन्ना इंसान करता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह गनी है और हम नहनुल फकारा। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेपरवाह है, उसको किसी असबाब की जरूरत नहीं। फिर भी हम कैसे उस रब के सामने एरोगेंट हो सकते हैं? इतनी अजीम हस्ती के सामने हम कैसे बार बार गुनाह कर सकते हैं? फिर अल्लाह को असमद मानने वाले कैसे मायूस हो सकते हैं? फिर अल्लाह को असमद मानने वाले कैसे डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं? फिर अल्लाह को असमद मानने वाले किस तरह खुद को जाया कर सकते हैं? असमद का नाम बहुत होप दिलाता है इंसान को। तो ये अल्लाह का तारुफ था सिर्फ एक नाम के जरिए कि अल्लाह असमद है। अब उसके बाद जो तीसरी आयत है, लम यलिद वलम यूलद, इसकी क्या ट्रांसलेशन है कि ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। इसके ऊपर स्कॉलर्स की दो आरा हैं। मेजॉरिटी कहती है कि ये एक आयत है, यानी लम यलिद वलम यूलद टोटल एक आयत है, जबकि कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि नहीं, ये एक आयत नहीं, दो आयात हैं। लम यलित अलग आए थे, वलम यूलत अलग आए थे। याद रखिएगा जो नंबरिंग है कुरान की वो दो तरह की है, एक तौकीफी यानी मेजॉरिटी सूरतों के नंबर अल्लाह और रसूल के बताए हुए हैं, लेकिन कुछ में सहाबाए कराम का इज्तिहाद है। अब देखिए, लम यलिद ना उसकी कोई औलाद है, ये माजी का माना दिया गया, क्यों? कोई मुझे बताएगा, अल्लाह ताला ने ऐसे क्यों नहीं कहा कि उसकी कोई औलाद नहीं हो सकती या उसकी कोई औलाद नहीं होगी? मुस्तकबिल की बात क्यों नहीं की गई, माजी की क्यों बात की गई कि लम यलिद उसकी कोई औलाद नहीं है? इसलिए कि माजी में अगर शिर्क की गुंजाइश नहीं थी तो आगे भी नहीं होगी, अगर कल नहीं थी तो आज भी नहीं है और आने वाले कल में भी नहीं होगी। और दूसरा, माजी में जितने भी वो शरीक ठहराते थे अहले अरब, उन सब का कलाई कमा कर दिया गया। खुद सोचिए एक सूरत, और इसमें माजी का सेंटेंस बोल के इससे पहले उन्होंने जितनी इबादतें की थी, जितने शरीक ठहराए थे, सबको क्रॉस कर दिया गया। कि उसकी कोई औलाद पास्ट में नहीं थी, पास्ट में भी नहीं है तो आज भी नहीं है, क्योंकि सिलसिला नसब का होना बहुत जरूरी है। मसलन आपके फोर फादर्स पास्ट में थे तो आज आप हैं। ये कैसे हो सकता है कि पास्ट में कुछ भी ना हो और आज कोई नई नस्ल आ जाए? नो, लेगेसी पीछे से स्टार्ट होती है। तो इसलिए सुभान अल्लाह, एक सीगा यानी माजी में जुमला बोलकर अल्लाह ताला ने माजी के तमाम शरीकों को निगेट कर दिया। अगर थोड़ी देर हम लॉजिकली यानी अपने दिमाग से भी काम लें तो खुद सोचें कि अल्लाह जैसे सिफात रखने वाली हस्ती औलाद नहीं रख सकता। औलाद तो ज़ाइफ इंसानों को जरूरत होती है, जिनको एक सहारे की जरूरत होती है, जिनको चाहिए होता है कि कोई हमें संभाले। लेकिन अल्लाह तो समद है, एक समद को औलाद क्यों चाहिए होगी? एक समद को वाइफ क्यों चाहिए होगी? इसके अलावा देखें, जिसकी जो औलाद होती है ना, वो उसका शेड होता है। मसलन परिंदे की औलाद भी क्या हो गई? परिंदा। जानवर की औलाद भी क्या होगी? जानवर। इंसान की औलाद भी क्या होगी? इंसान। और फिर इसी तरह अल्लाह की औलाद भी क्या होगी? अल्लाह। तो ये कैसे हो सकता है कि आपने अल्लाह की औलाद तो बना ली, लेकिन उसको फिर आप कहते हैं ये इला नहीं है, औलाद है? ये कैसे पॉसिबल है? तो गोया लम यलिद ने बता दिया कि हुवल अव्वलु लैस कबलहु शै, हुवल आखरु लैस बादहु शै, कि अल्लाह की ना कोई बिगनिंग है और ना कोई एंड है। अब एक और चीज पर आप गौर करें, देखें लम यलिद व लम यूलद। लम यलिद ना उसकी कोई औलाद है, व लम यूलद और ना वो किसी की औलाद है। यानी लम यलिद में औलाद और वलम यूलद में बाप का जिक्र है। हम बाप को पहले आना चाहिए था और औलाद को बाद में आना चाहिए था। यानी ऐसे होना चाहिए था कि लम यूलद वलम यलिद, ना कोई बाप है इसलिए ना कोई औलाद है। लेकिन बात यूं स्टार्ट हो रही है कि लम यलिद वलम यूलद, ना कोई औलाद है और ना कोई बाप है। बाप को पहले आना चाहिए था ना, औलाद को बाद में, लेकिन लम यलिद क्यों पहले आया है? कौन मुझे इसका जवाब देगा? बेसिकली लोगों ने ये शिर्क नहीं किया कि अल्लाह का बाप है। कहीं आप नहीं सुनेंगे कि लोगों ने इस तरह का शिर्क किया हो कि अल्लाह का बाप है, बल्कि ये शिर्क बहुत ज्यादा रहा है कि अल्लाह की औलाद है। तो इसलिए लम यलिद पहले आया और वलम यूलद बाद में आया। अब देखिए यहाँ पे शिर्क की मुकम्मल नफी है, और शिर्क की बीमारी इसका दिल से ताल्लुक है। कैसे? जब हम कम अमल पर ज्यादा अचीव करना चाहते हों तो हम शिर्क करते हैं, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप टीचर को तो खुश ना करें, मगर आप अपनी क्लास के सीआर को बहुत खुश करें। आप उसके हाँ में हाँ मिलाएं, और फिर आपको पता हो कि ये जाके मेरी सिफारिश टीचर से कर देगी तो मेरा तो काम चल जाएगा। तो यही रीजन होती है शिर्क करने की, ये कोर रीजन है कि हम चाहते हैं कि कम अमल पर हम ज्यादा अचीव करें। यही हाल आज के इंसान की है कि वो अल्लाह को तो खुश नहीं कर रहा, लेकिन इन पीरों को और फिर जो और आब्द हैं उनको खुश करने में लगा हुआ है। तो गोया शिर्क किसको कहते हैं? कि आब्द अपने और रब के दरमियान किसी भी हस्ती को, चाहे वो अंबिया, अउलिया या कोई मेटेरियलिस्टिक चीज है, कोई ख्वाहिश है, कोई फीलिंग है, उसको ले आए, ये शिर्क कहलाता है। आज हम शिर्क की बहुत सी कैटेगरीज में किसी ना किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूर इन्वॉल्व हैं। बाज़ औक़ात हम अंबिया और अउलिया को इस मकाम पर ले आते हैं। याद रखिएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया और तमाम बशर में से आला हैं। उनका मकाम अपनी जगह पर, लेकिन हम उनको भी मनपसंद मकाम नहीं दे सकते। हमारे आज के बिलीफ सिस्टम में तौहीद झलकती ही नहीं है। अब जरा गौर करें, सिर्फ नात खानी, कहाँ उसमें तौहीद है? किस तरह रसूलुल्लाह के मकाम की बेअदबी की जाती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में अशआर बोले जा सकते हैं। अल्लाह ने रसूलुल्लाह की खुद भी तारीफ की है, कभी ताहा, कभी यासीन, कभी मुजम्मिल, कभी मुदस्सिर, कभी बदरुम मुनीर। लेकिन स्कॉलर्स कहते हैं कि रसूलुल्लाह की तारीफ में अशआर करते वक्त, यानी अशआर बोलते वक्त, इतना मोहतात होने की जरूरत है जितना नंगे पांव तलवार पर चलना। यानी मोहतात होने की भी इतनी जरूरत है और इतना डिफिकल्ट भी है। लेकिन आज बीइंग अ वुमन, फुल मेकअप करके और लहक लहक के हम नाते पढ़ते हैं, ये कैसा रवैया है? कहाँ से तौहीद झलकती है? और सिर्फ आप नातों के कुछ अल्फाज पर गौर कीजिए, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे नाते हैं। मसलन, या नबी, देखा है रुतबा आपकी नालेन का, अर्श ने चूमा है तलवा आपके नालेन का। अल्लाहु अकबर, कहाँ से दलील मिली? कहाँ से आपको पता चला कि अर्श ने रसूल अल्लाह के कदमों को चूमा या उनके जूते को चूमा? फिर इसी तरह अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है? जो कुछ लेना है हमें लेंगे मोहम्मद से। वट इज दिस बिहेवियर? ये कैसा तर्ज अमल है कि अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है? फिर इसी तरह एक और सुने, आ गई सामने आंखों के अल्लाह की सूरत, आई जो सरकार अल्लाह की बुरहान बनकर। फिर इसी तरह, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगी जब तनहा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूलुल्लाह। पहले अल्लाह को पुकारना है, अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल, अल्लाह की अताअत, उसके साथ रसूल की अताअत। इसी तरह बेशुमार ऐसे नाते हैं कि जिनमें शिर्क झलकता है, बेशुमार ऐसे नाते हैं जिनमें पीछे धुन, म्यूजिक और लहकार और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ये सिर्फ मैंने एक साइड आपको दिखाई है शिर्क की। इसके अलावा डेली बेसिस पे हमारी लाइफ में कितना शिर्क है। फुलां जगह से अगर गुजर गई तो कुछ हो गया, फुलां बंदी जब से हमारे घर में आई है हमें प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं, फुलां परिंदा जब भी बोलता है कुछ ना कुछ हो जाते हैं, ये सुपरस्टिशंस। फुलां जब भी बोलती है उसके बाद ये चीज हो जाती है। ये सब क्या है? कि शिर्क नहीं है तो और क्या है? एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, माशा अल्लाह व मा शिता, यानी जो आप चाहें और जो अल्लाह चाहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका ये जुमला नामुनासिब लगा। आपने फरमाया, अजअलतनी लिल्लाह नित, क्या तूने मुझे अल्लाह के बराबर किया है? फिर खुतबा दिया और लोगों को मना किया कि आइंदा मुझे कभी अल्लाह के इक्वल लाके खड़ा ना किया जाए, और फिर कहा कि माशा अल्लाह वहदहु, कि अल्लाह अकेला है और अल्लाह जो चाहे करे। तो देखिए, रसूलुल्लाह तौहीद के साथ कितने कंसर्न्ड थे। तौहीद एक सीरियस बिजनेस है, याद रखिएगा। सिर्फ अल्लाह हाजत रवा है, अल्लाह मुश्किल रवा है। हम आज क्या कर चुके हैं? मोहब्बत में कितना गुलूब, चाहे वो अंबिया की मोहब्बत है और रिलेशंस की मोहब्बत है, जबकि ईमान वाले किसके मोहब्बत में ज्यादा होते हैं? वल्लदीन आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, ईमान वाले तो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद हैं। हमने बहुत से ताहूत अपने अंदर बिठा लिए हैं, बहुत से अजल, कभी किसी इंसान की शक्ल में, कभी कोई मादी चीज है, कभी कोई ख्वाहिश है, कभी कोई ऐसा गोल है, बस हर वो चीज जो मेरा और आपका हम और गम है वो शिर्क के जुमरे में आ रहा है। और आजकल हम शिर्क फिल मुहब्बा में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। मोबाइल, ड्रामा, ख्वाहिशात, फैशन, ब्यूटी, इनमें इतना खुद को एंगेज्ड करना कि बस इसके अलावा कोई और धुन ना हो, खाना बस और इसके अलावा जिंदगी का कोई और मकसद ना हो, बस घूमते फिरते रहना इसके अलावा जिंदगी का कोई और मकसद ना हो, तो सर्च करें कि कहीं मैं शिर्क फिल मोहब्बा में तो गिरफ्तार नहीं हूं, कहीं कोई ऐसी ख्वाहिश तो मेरे अंदर नहीं है जिसने मुझे इतना अंधा कर दिया हो कि मैं अल्लाह के अहकामात को सुन भी रही हूं लेकिन अमल नहीं कर पा रही। कितने लोग ही कहते हैं कि बस हमें पता नहीं क्या है, हमें एडिक्शन हो चुकी है, हम ड्रामा नहीं छोड़ सकते। शिर्क है ये, शिर्क फिल मोहब्बा, इतनी उस चीज से मोहब्बत कर दी है कि अल्लाह के हुक्म को पीछे डाल दिया। मैं उस बंदे को नहीं छोड़ सकती, मैं उस रिलेशन को नहीं छोड़ सकती, मैं क्या करूं? क्यों क्या करें, छोड़ें? हराम हराम है। और हर चीज को खुद से ना देखें, ये देखें कि कुरान किस तरह दिखा रहा है। और आज की क्लास की आखिरी आयत, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना उसके जोड़ का कोई है, यानी उसके जोड़ का भी कोई नहीं है। और कुफुवन काफ फा हा से निकला है और इसका मतलब होता है किसी का जोड़ा, इक्वल होना और हम आहंगी। और अरब में ये लफ्ज इस तरह इस्तेमाल किया जाता था कि जब जंग में बराबर के दो सोल्जर्स हों तो अल्लाह के बराबर भी कोई नहीं है। अल्लाह अकबर, शिर्क की अब मुकम्मल नफी, अल्लाह जैसा कोई भी नहीं है। ले सकमिसलिही शई, वो इतने खूबसूरत जात है, उसको अकेला ही माने, उसके मकाम के बराबर किसी को लेकर ना आए, चाहे वो इंसान हो कोई और चीज हो, अल्लाह सरापाई मोहब्बत है। अल्लाह के रजा को अपना गोल बनाए, जो इतनी परफेक्ट हस्ती है उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, उसके लिए हम क्यों ना भाग दौड़ करें। और याद रखिएगा, अल्लाह को पाना बहुत आसान है, अल्लाह को मनाना बहुत आसान है, अल्लाह को राजी करना बहुत आसान है, लोगों को मनाना मुश्किल है, उनको राजी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह के साथ ताल्लुक दिलों को सुकून देता है, कल्ब के अंदर तक इत्मीनान पहुंचा देता है। तो उस अल्लाह के साथ जुड़िए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें शिर्क से बचाएं। एक लेक्चर है द मेनी शेड्स ऑफ शिर्क, शिर्क की बहुत सी टाइप्स, इंशाल्लाह वो मैं अलग से भेज दूंगी क्योंकि इन दिनों आप सब फ्री होंगे। ईद आने वाली है ना, तो सबको हॉलीडेज हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हजरत उमर से पूछा गया कि आप कब राहत से बैठेंगे, यानी कब सुकून से बैठेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त भी सुकून में नहीं हूंगा जब तक मेरा एक कदम जन्नत में होगा, और जब मेरे दोनों कदम जन्नत में पहुंच जाएंगे मैं सुकून से तब बैठूंगा। तो दुनिया में जिस जिसकी असल चाह जन्नत हो और अल्लाह की रजा हो, वो सुकून से नहीं बैठ सकता, उसके लाइफ में कोई हॉलीडे नहीं होता। आप समझ गए मेरी बात? तो जिंदगी बहुत थोड़ी है, इसको एंजॉयमेंट में नहीं गुजारनी, असल एंजॉयमेंट तो इंशाल्लाह जन्नत में जाके करनी है इंशाल्लाह। तो इसलिए ये जो थोड़े से दिन हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के साथ तो हर दिन रिलेशन कायम होता है, चाहे वो इतवार का दिन हो, चाहे वो जुमा का हो, हफ्ते का हो, चाहे वो समर वेकेशंस हो, चाहे वो विंटर हॉलीडेज हो, कुछ भी हो, उस रिश्ते से तो कभी छुट्टी नहीं मिलती, और सब रिश्तों से किसी ना किसी तरह ब्रेक आ जाती है, पेरेंट्स से, अपने स्पाउस से, अपने और जितने रिश्ते होते हैं, लेकिन उस रिश्ते से कभी ब्रेक नहीं मिलती। तो उसको हर दम ताजा करने की, हर दम रिफ्रेश करने की, हर दम स्ट्रांग करने की कोशिश चाहिए होती है। और वो इंसान कोशिश कैसे करता है? सीख के, जैसे आप सीख रहे हैं, आपको अल्लाह की पहचान हो रही है, तो इंशाल्लाह मैं वो लेक्चर भेज दूंगी शिर्क की बहुत सी टाइप्स, और मोहब्बत की भी स्पेशली कि मोहब्बत में शिर्क कैसे होता है, तो आप लोग वो लाजमी सुन लीजिएगा। आज का लेक्चर इसलिए थोड़ा शॉर्ट है कि मैंने थोड़ा लेट भेजा है, तो और वैसे भी आप सब बिजी होंगे तो थोड़ा सा शॉर्ट है, आप आराम से सुन लीजिएगा। लेकिन जो अगला पोर्शन आएगा इंशाल्लाह, मेनी शेड्स ऑफ शिर्क और मोहब्बत क्यों, किससे और कैसे, तो ये एक ही लेक्चर हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपको आने वाले 2 दिनों में भेज दूंगी, आप चाहे तो सुन लें, अपने नॉलेज में इजाफा कर लें, और चाहे तो सुस्ती करते हुए या कोई इंजॉयमेंट करते हुए आप इग्नोर कर दें, इट्स अप टू यू। ओके, आज की जो हमारी दुआ है वो है ईमान से मुज़य्यन होने की दुआ। चले हम पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा ज़य्यिना, अल्लाहुम्मा ज़य्यिना बिज़ीनतिल ईमानी वज़अलना हुदातम मुहतदीन। اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين। ए अल्लाह, हमें ईमान की जीनत से मुजयन कर दीजिए और हमें हिदायत याफ्ता लोगों का रहनुमा बना दीजिए। आमीन। कि हम वो चराग बने कि लोग हमें देख के रहनुमाई हासिल करें, और हमारे दिलों की जीनत क्या हो, हमारे ख्वाहिशात, हमारा फोन, दुनिया की कोई चीज, नो, हमारा ईमान हमारे दिल की जीनत बने, हमारे दिल की बहार बने। तो ये बहुत खूबसूरत दुआ है, इसको आप सबने याद भी करना है, अपनी इस्तकामत के लिए, अपने साथियों की इस्तकामत के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। अस्तौदियुकुम अल्लाह दीनकुम व अमानतकुम व खवातिम अमालकुम, तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।